गधा वो क्यों है? वो गधा का अवतार माना जाता है। जितने अशुभ लोग हैं गधे हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते वो सचमुच में गधे हैं। बिना सिंह और बिना सिंह के वो है जानवर, जानवर ऐसे जिनकी सिंह नहीं है, ऐसे ही जानवर। गधा इसलिए देखो उसको कुछ मालूम नहीं रहता है, जगत का जितना गंदा चीज है लेकर के छोटा है, और जितनी अच्छी चीजें हैं चीनी घी ये सब पहाड़ों में लेकर के चलते हैं बड़ी बड़ी कठिनाई के ऊपर में, किंतु उसका मालिक उसको एक चीनी का बूंद या मीठा या आटा घी मैदा बूरा कुछ नहीं। गधे इसलिए मूर्ख है, धोबी गंदे कपड़े धो करके ले जाते हैं, धोते हैं और उस पर लाद करके लेते हैं, किंतु गधा एक भी नहीं पहन सकता। उनका एक ही काम है स्त्री के पीछे पीछे दौड़ना, और आवाज भी उनकी ऐसी ही है। विशेष करके वो बरसा के दिनों में बड़े दुबले पतले हो जाते हैं, अब गर्मी के दिनों में मोटे हो जाते हैं। तो गर्मी के दिन में इसलिए मोटे होते हैं जब घास नहीं रहती सब सूख जाती है। बहुत लंबे दूर से चलते हैं यहाँ से, ये इतना आज मैंने 5 माइल मैंने घास मैंने चर लिया इसलिए मोटे हो जाते हैं, खाया कुछ नहीं। और बरसात के दिनों में घास चारों तरफ हो जाती है तो थोड़े में ही पेट भर जाता है, फिर आज तो मैंने कुछ चरा नहीं अभी खाया नहीं इसलिए दुबले हो जाते हैं। ये सब गधों की निशानी है। तो जो लोग हरी घास रूपी भक्ति है प्रेमा भक्ति उसको नहीं समझते हैं वो गधे नंबर एक है। बलदेव प्रभु जी गुरु है इसलिए उसको बध कर दिया और ये सारी चीजों को उसको दूर कर दिया। हम लोग भी गधे हैं, गधे थे किंतु गुरु जी की कृपा से अब धीरे धीरे सुधर करके भक्ति की तरफ में आ रहे हैं। इसलिए मनुष्य की बुद्धिमत्ता है कि भगवान का भजन है। भगवान का जिसलिए चैतन्य महाप्रभु आए थे इस जगत में उस पर विचार करें, किस लिए आए थे, क्या देने के लिए आए थे, कृष्ण किस लिए आए थे, इसको विचार करके बुद्धिमान मनुष्य वह है ये गुरु के परामर्श से इनको समझे। ये कृष्ण की सर्वोत्तम जो सेवा है जो ब्रज में प्रकाशित हुई, क्या हुई, सखरस बात्सल्य मधुर भाव, इन तीनों में जैसे यदि किसी को एक मिल गया और उसमें से भी जो अंतिम जो सबसे गोपियों का भाव है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय सत्ताम वृंदावनम रमना काचित उपासना पदुपधु वर्गे न जा कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्मो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्कालो नमर। ये चैतन्य महाप्रभु का विचार है। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर राधा जी के साथ में आराध्य हैं, बलदेव प्रभु जी धाम स्वरूप हैं, उनका वैसा ही आदर हो जितना कि कृष्ण का करता है। और आराधना में सर्वोत्तम आराधना गोपियों की है। ये गोपियों की आराधना क्या है इस विषय को नहीं समझना भी गधापन है, इसलिए इसको समझना चाहिए। जब महाप्रभु के अवतार में और लीला में हम यदि उस चीज को नहीं समझ सकते हैं तो कोटि कोटि जन्मों में कल्पों में उस चीज को हम कभी भी कदापि नहीं समझ सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिए। अभी अभी 500 वर्ष गया है महाप्रभु जी का जन्म, महाप्रभु जी इसीलिए आए थे। बलदेव प्रभु जी गधापन दूर करते हैं, महाप्रभु जी प्रेम का प्याला पिलाते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। महाप्रभु नहीं आएंगे राधा कृष्ण का प्रेम का प्याला हम नहीं कभी कदापि ग्रहण कर सकते। इसलिए सौभाग्यवान बुद्धिमान वो है जिनका गधापन दूर हो गया है और राधा कृष्ण के भजन में जैसे कि चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि जिस विषय में हम खोल रहे आए हैं ऐसा है। इस जगत में अभी भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जी बहुत से गधे को देखा देख करके चित्त उनका द्रवित हो गया। तो सर ये गधों को मंच के बना देना, इसलिए विश्व में सर्वत्र जा करके उनको कलेक्शन करके उनका हृदय शोधन करके भक्ति का अमृत रस पिलाने के लिए चेष्टा की। इसलिए जगत पर उनकी अशेष करुणा है, इस चीज को समझना चाहिए किस चीज के लिए वो आए थे। भक्ति वेदांत थे ना, तो भक्ति वेदांत माने क्या होता है? भक्ति वेदांत माने होता है प्रेम। भक्ति का वेदांत सबसे ऊंचा क्या चीज है? कृष्ण का प्रेम ही भक्ति का वेदांत है। इसलिए हमारे गुरु जी ने भी हम लोगों को भी जैसे नाम दिया उनको भी वैसे नाम दिया, इसलिए इसकी सार्थकता होनी चाहिए। पास ही में ताल बन के एक तरफ में छोर में है कुमुद वन है। कुमुद वन माने क्या? जब यहाँ का रास्ता साफ हो गया, मधुबन से ताल बनना है, मधु पान करके कृष्ण प्रेम मधु पान करके जब आए यहाँ पर धेनुकासुर का वध करके आगे जब गए तीसरे वन में, वो है कुमुद वन। सुंदर सुंदर कुमुद चारों तरफ में खिले हैं, दिनी दिनी सुगंध आ रही है। उन कमलों पर भ्रमत संकार करें मदमत्त हो रहे हैं। सरोवर में स्वच्छ जल पानी है, गायों को पानी पिलाया, अपने पानी पिया और उसी वन वो सरोवर में सब बच्चे कूद गए और वहीं पर तैरने लगे, कोई कुछ करने लगा, सब प्रकार से एक दूसरे पर पानी छींटने लगे। बहुत आनंद हुआ। इस तरह से कुमुद वन में वो आए। कुमुद वन को हम लोग यहीं से प्रणाम करेंगे और ये लोग तो शायद पैदल जा रहे हैं, वहां पर जाएंगे, आप लोग सब वहां पर जाएंगे। हम लोग यहीं से प्रणाम करके कुमुद वन को दर्शन करके फिर यहाँ से हम लोग मधुबन की तरफ में और फिर और जाएंगे। बोलो बलदेव प्रभु की जय, ताल बन की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, रूपानु गुरु वर्ग की जय, गौ प्रेमानंद।
ये ले लो,
he becomes thin, weak during rainy season. Why? During summer there is no grass at all. He crosses miles together and he finds no grass. When he sees back, oh, he has crossed so many miles and trails the all grass of 5 kilometer field, he becomes happy. He has eaten so much grass. And during rainy season, when there is grass everywhere, he eats grass. After eating a little bit grass, his stomach gets filled and he sees around, he says, so much grass is still left and he has not eaten. He has become very, very weak. He has become very ill. So he is unable to eat so much grass.
अपने कट्टे से दुबला जाता है।
This certain thing to give us, and what is that? That is Brajrat Prem. What is Brajrat Prem? Sakya, Vatsalya, and Madhuri. And especially those who get the topmost thing, that is Madhurya, that was the desire of Mahaprabhu. Mahaprabhu told us that to whom and which way we should worship. His real gift to us is we should worship in the way gopis are worshipping. Maharaj says that A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, he saw so many donkeys around the world. He was restless. He went around and he collected so many donkeys. Just before that, Maharaj told that there are two words. Baldev Prabhu, he kills ignorance, and Mahaprabhu feels love of Krishna. So, A.C. Bhakti Vinayak Swami, he went around the world. He collected many donkeys, he killed their ignorance, and he tried to feel love that Mahaprabhu is giving to each of us, into the heart of every, those people who were otherwise
donkeys.
किंतु भक्त लोग असुर के असुरत्व को दूर करके प्रेम फल कृष्ण का जो प्रेम है इसका स्वादन करते। बलदेव प्रभु जी की हम लोगों पर कृपा हो, आप लोगों के ऊपर में बलदेव प्रभु भी भक्ति पुरुष हो,
that if you feed him, then you all Krishna pain. This land is so much powerful that a dust of this place, Talban, can give Krishna Prem actually. So we should not think that this is a dust like worldly dust. The dust has power like Krishna and Baldev. The dust is not anything else but Krishna and Baldev himself. So with very honor, very deep of honor, with heartly honor, we should take the dust in our head, in our heart, and in the head. And thus we will have the mercy of Baldev Prabhu and this dham. This dham is also Baldev Prabhu. इसे बलदेव प्रभु जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सबके ऊपर में कृपा करें. हम लोग दीनहीन हैं, बस यही प्रार्थना करके हम लोग चलते हैं. आप लोग यू कैन डू परिक्रमा.
बलदेव प्रभु की जय.
पीछा देख रहे हैं दैट गार्डन वेरी नियर अस, यही कुमुद वन है. वहां पर ऐसा ही एक सरोवर है और सरोवर में कुमुद के फूल अब तो नहीं है. अब जैसे यहाँ पर क्या है, कचौरी पाना है, ऐसे वहाँ पर कचौरी पाना है. और वहाँ पर अब राधा कृष्ण के अभी तक दर्शन नहीं होते, तब कपिल देव के या और किसी किसी देवता का मूर्ति रख दिया है. वहाँ जाएंगे तो भाव बिगड़ जाएगा. इसलिए यहीं से आप लोग कुमुद वन को दे करके और यहीं से प्रणाम करें. जय कुमुद वन की जय.
तो और अच्छा है.
हमारे साथ चले. नाम क्या है इनका?
और हम लोग करते हैं भक्ति. तो इसका नाम क्या कहते हैं? व्रत है क्या इस महीने का?
ऊर्जा
इस महीने का ऊर्जा व्रत. ऊर्जा
ऊर्जा राधा जी का नाम है.
ऊर्जा
ऊर्जा माने शक्ति,
एनर्जी,
कृष्ण की एनर्जी. राधा जी समस्त एनर्जी की मूल मालिका नहीं है. इसलिए इस वक्त का नाम है ऊर्जा व्रत. जो इस व्रत को करेगा उसमें राधा जी की शक्ति संचित होकर के
इस व्रत का क्या नियम
है? इसमें चार महीने का और फिर चार महीने को एकत्र करके फिर एक महीने में लाया गया. इसे ये चातुर्मास कहलाता है. और फिर इसको दामोदर व्रत, ऊर्जा व्रत, नियम सेवा, कार्तिक व्रत, इसका ये नाम है. बहुत महत्व है.
इसमें ब्रज में रहना चाहिए एक महीना.
ब्रज में रहे, ब्रज के भावों को ग्रहण करने की चेष्टा करें, ब्रज की झूला में घोषित हो. और हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जैसे ब्रज में रह करके भजन करते थे, नियमित रूप में भोगों को छोड़ करके, पलंग को छोड़ करके, स्त्री सुख को छोड़ करके
मुझे ध्यान देखते हैं स्त्री पुत्र की बात. लोग छोड़ के लाओ,
रखो किंतु आसक्ति मत रखो. ये बात
अरे गाड़ी कहाँ गई?
लात मार रहे हैं किंतु मैं अभी करता नहीं. पिछले लात से मार रहे हैं मुझे.
अभी
मारते हैं पिछले लात से. ऐसे नारायण महाराज हम लोगों को खराब कर देगा. कोई मत क्या वो चीज जानता है?
खोजने नहीं जाते आप.
आपको मैंने खोजा था ना, आपने हमको खोजा, बतलाइए.
लेकिन आपने मुझे बताया था कि जब आप.
मैं किंतु जानता हूँ आप हमारे फेर में पड़ गए हैं.
महाराज आपकी तो सरलता ऐसी है कि शुरू से ही हम आपके आसक्त भक्तों में से. समय नहीं
देखे
एक मिनट भी कोई तंग करेगा नहीं,
जरूर उस पर प्रभाव पड़ेगा। भक्ति एक ऐसी चीज है,
जैसे भी आप जितना वो लोग कहा कि महाराज जी से मत लेंगे, उनका विचार मत लें, किंतु आप लेने के लिए बात है, क्योंकि असल चीज तो यही है। आप लोगों की बात कभी सुन नहीं सकते, मिलेंगे जरूर।
नहीं, लेकिन जैसे आपने मुझे कहा, जब आप पहली बार गए मायापुर, तो वहाँ पर एक आदमी पहले से ही खड़ा था स्टेशन पे, आपको तो पता नहीं, राइट? तो इसका मतलब आपके गुरु जी आपको ढूंढ रहे थे।
गुरु ही ढूंढते
हैं। फिर आप जब कहते हो, आप क्यों कह रहे हो कि हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं?
आप आए थे कि नहीं हमारे पास?
हम कहाँ आए?
गोपाल कृष्ण जी ने आपको भेजा हमारे लिए, आपके गुरु जी ने ही भेजा।
हम इनको कल बता रहे थे, हमने कहा कि जब मैं इस कान में आया तो रामचरितमानस को लेकर बड़ा वहाँ पहुँच, उनका उन्होंने ही समझाया, तब से हमें बड़ी आसक्ति हो गई कि महाराज जो बात कहते हैं उस पर इनका पूरा अधिकार है, पढ़ कर कर नहीं बोल रहे, मजी मजा ही चीजें बता रहे हैं। मैं तो कल कह रहा था, मैं परसों समाज से मारा था, उनका महाराज जितने
सारे
गुणों
के अंतर्गत मधुबनी
अभी हम लोग
क्या बात कर रहे हैं, मधुबनी आए हैं यहाँ पर, मधुबनी बिहारी से बलदेव जी और तेजस्व चंद्र ने लीला विलास किया है, यह उनका यह प्रिय स्थान मधुबन। इसी मधुबन के अंतर्गत मथुरा मथुरा मथुरापुरी कहलाता है। तो सबसे पहले जितने भी वर्ण है समस्त वर्णों में इस मधुवन की विशेषता दिखलाई है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जितने भी आचार्यगण सभी आचार्यगण यहाँ उपस्थित किए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कांग शुरू आए हैं, कृष्ण बलदेव ने सखाओं के साथ में यहाँ पर लीलाएं की हैं। इस तरह से यह मधुवन श्रीमद् भागवत के दसवां स्कंध में 15वें अध्याय में जहाँ पर वन विहार के प्रसंग में वृंदावन के लीला का वर्णन होता है, यदि कृष्ण बलदेव दोनों और गोकुल से वृंदावन को आए, कृष्ण के जब उम्र 3 वर्ष 4 महीना के थे तब गोकुल छोड़कर नंद बाबा समस्त ब्रजवासी जनों के साथ में वृंदावन में छत्तीसगढ़ में निवास।
खूब लंबा जी है।
तो छत्तीसगढ़ से कृष्ण बलदेव दोनों ही वस्त्र पालक बने और वृंदावन में आसपास के स्थानों में खेल कूद लीला विहार इत्यादि के द्वारा इस प्रकार वस्त्र पालक जाने बच्चों को चराया करते। तब उस समय यहाँ पास ही में यह मधुवन है, जिस मधुबन में आकर के सखाओं के साथ में छोटे छोटे गोपियां जहाँ पर है ऐसे सखन के साथ में विभिन्न प्रकार के लीलाएं यहाँ का वर्णन करते हुए कृष्ण ने बलदेव जी से कहा, दाऊदिया देखो ये वृंदावन के इस मधुबन के वृक्ष सब कैसे हैं, यहाँ के भाव है, यहाँ के पशु पक्षी कैसे आपका स्वागत कर रहे। कृष्ण के अपने मुखारविंद से वर्णन मधुवन के देखा है, जहाँ पर भौरे गुंजारवान है गुण गुण सर से जान कर। तो भौरों के सर को मिलाकर लिए कृष्ण ने बंसी ध्वनि की शिक्षा है। इस तरह से बलदेव जी से कहते हैं यहाँ पर कितने प्रकार के मधुमक्ख के छत्ते लगे हुए जहाँ उन्होंने मधुपान किया है। इस तरह से केवल मधुपान ही नहीं है कि वृंदावन के ध्रुव का लताएं जुर्म आदि सब प्रेम में विभोर है। कृष्ण बलदेव के लिए विभोर हो रहे हैं। तो ऐसे जो ब्रज के गुर्म आदि वृक्ष लताए कृष्ण बलराम को पाकर के स्वागत करते हैं अपने भवन में, व्यंजय अंत ही वो पुष्प फलाच्छा हर पुष्पों के द्वारा नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और आंखों से आंसू बहता है जाने फूलों से मधु की धारा जाती। तो ये जो है ये मधु धारा का प्रवर होना ये मधुबन। तो इस प्रकार से
یہ مدھوبن کی ولایت. کیول اتنا ہی نہیں, ستر یوگ سے لے کر کے یہاں پر ولایت ہوئی. سب سے پہلے مدھوبن یہ جو مدھورا ہوا ہے, یہاں پر ہم نے شترگھ گوبا جی کا درشن کیا. تو شری رام چندر جی کے بھراتا شترگھر جب کہ شری رام کے ساتھ میں لکشمن جی اور بھرت جی ان لوگوں نے بہت سی سیوائیں کی ہیں, تو شترگھر جی نے کہا کہ بھیا مجھے بھی کچھ سیوا پردان کریں. بولے جی اچھا, سمے آنے پر ہم ضرور بتائیں. اتنے میں یہاں کے رشی منی لوگ شری رام چندر جی کے پاس ایودھیا میں پہنچے. انہیں یاد کر کے ان سے نویدن کیا کہ پربھو مدھوبن میں مہادیت کا پتر لوناک بڑا ہی اتیاچار کرتا ہے, سمست پرجاؤں کا رشی منیوں کا سنتوں کا سب کا انادر اتپیڑن کرتا ہے. تو اس دشٹ کا وناش ہونا چاہیے. آپ پرتھو کے بھاو کو اتارنے کے لیے اوتے نہ تھے. جیسے لنکا میں راکشس راج راون کا وناش کیا, ایسے ہی لوناسر کا وناش کر کے ہم سب کی رکشا کریں. رشی منیوں کے نویدن کو سن کر شری رام چندر جی نے اپنے بھائی شترگھن جی سے کہا کہ تمہیں لوناسر کو مارنا ہوگا, مدھوپوری میں جانا ہے. تو اسی سمے انہوں نے شترگھن جی کو رائے سے لے کر دیا کہ مدھوپوری کے تم راجا بنو. تو اس سمے یہ مدھوبن تھا, تو اس مدھوبن کے ان کو راجا بنا دیے, راجا کی گھوشنا کر. تو شترگھن جی جب آنے کی تیاری کی اس سمے شری رام چندر نے ان کو ان کی پرارتھنا سے برہادر جی کو دیا تھا, جو کہ لنکا سے لائے تھے کرشن وراتھ, اور لوراتھن کو مارنے کے لیے لوراپور کے پاس میں یہ ترشول تھا, جو کہ مدھر رشتے نے سرکی کی آرادھنا کر کے اس ترشول کو پراپت کیا تھا. اور اس ترشول کے ہاتھ میں رہتے ہوئے وہ دربھر پرتھوی میں اڑیے تھا, کوئی اسے پراجے نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ سوریوشی نریش مانگا تھا, جو کہ دیو لوگ نے وجے کیا وجے کرنے کو گئے, تو دیوتاؤں پر جب چڑھائی شروع کر دی تب اس سمے دیوتاؤں نے کہا اڑی پرتھوی پر مدھو رشتے لوڑا مدھو رشتے کا پتر لوڑا, تو اس کا تو اپنا وناش نہیں. تو ایسے یہ لوڑا سور جو ہے مانتا کو بھی مار دیا. تو اتنے بڑے دوست تو یہ لوڑا سور بہت کام سے یہاں رہتے رہتے ایسے ادوری پربھاؤ سے اتیاچار پھیلا دیا, جس سے کہ سارے سمک گزار سب کانٹے کرے کے پیٹ اور چار اور اس طرح سے کیول بھومی کھاری بنتی چلی گئی, پانی بھی کھارا بن گیا. اس طرح سے بڑا برا تھا پویا. تو اس لوناسر کو مارنے کے لیے شترگھن جی آئے, شری رام چندر جی نے ان کو سمجھا دیا. یہاں سے چار اور پوری کو گھیر دیا. اتنے میں لوناسر جب کے شکار کرنے کو گیا تھا گھر میں اس اثر کو چھوڑ کر, ایسے سمے میں پوری کو گھیراؤ کر دیا. لوناسر جب آیا اس کے ساتھ میں وہاں سنگھرش ہوا. اس سنگھرش میں شترگھن جی نے لوناسر کا وش کر کے اس پوری کو بسایا تھا, اس لیے اس پوری کا نام تبھی سے مدھورا رکھتا ہے. مدھورا سے پرورتی کال میں اس کو متھرا کہا جاتا ہے. شریمد بھاگوت میں بھی کہا ہے متھرام جتر بھگوان نشتا مکتر نہیں تو کھائے. یہاں پر مہاراج امبریش جی بھی آئے تھے, جو چکرورتی سمراٹ سکھا کر پتھری کے جو راجا سمست راج کاریہ مرتیوں پر دے کر کے یہاں پر اپستھت ہو کر کے اس مدھوبن میں بھگوان کی آرادھنا. آج بھی متھرا میں امبریش جی کا پرسدھ ہے. تو اس پرکار یہاں پر درواسا جی کے ساتھ میں یہ پرسنگ جو تو آپ لوگ جانتے ہیں, دروازہ جی آئے اور انہوں نے بھکتوں کی پریکشا لے تو امبریش مہاراج جی کی مہیم پرکاشت ہوئی. بھگوان نے امبریش جی کے لیے چتر سدرشن کو چھوڑ دیا, کرشن راکشس جی کو جلا ڈالا اور دروازہ جی کے پیچھے پیچھے گھومتے رہے.
ایک ورن سے روکتے ہوئے جہاں پر کہیں کوئی بھی شرن نہیں ملا گروان نے ان کو کہا کہ ہمارے مہاراج کے پاس جاؤ. تو پہلی سے یہ مدھرا پوری ہے, متھرا ہے, جہاں متھرا میں سبھی راجا لوگ جتنے بھی پراچین رشی منشی کیے ہیں یہاں پر آئے ہیں بھگوان کی آرادھنا کرنے کو, کیونکہ متھرام جتنے بھگوان نتم کرنے کی تو ہے. مہاراج دورشن نے بھی یہاں پر مدھوپوری میں ہی راجدھانی بنا لی, پر یہاں پر راجدھانی بنا کر کے یہیں پر انہوں نے راج کاریہ شروع کر دیا راجستھان, کیونکہ یہاں پر بھگوان شری ہری اتی شیگر ہی پرکٹ ہوئے, انہیں کے وش میں یہ جان گئے تھے, اس لیے جان بوجھ کر کے سمست جانوروں کے ساتھ میں یہاں پر نواس کرتے تھے. اسی پرکار کے جو مدھوپوری ہیں اور مدھوپوری کے انترگت یہ مدھو متھرا سے سنگر ہے, جہاں پر کرشن نے بھی پرکار کے دلائے, کیول اتنا ہی نہیں ویدوں میں بھی ورنن آتا ہے, وہ مدو آتا ہے مدھرم سے چندر ماتے سنتر سبھی گاؤ منو پارتی ہم رہی پکچر میں کہا ہے یہ مدو میں مدھو ہے. وہ مدھو کیا ہے؟ کرشن پریم روپی مدھو, جہاں پر گوپیوں کے پیمامبر کا سمرن کیا ہے شیام سندر نے. اس لیے یہ پریمانند کا مدھو کا تھان ہے جس مدھو کا کرشن نے سوئم آسمرن کیا ہے, سمست بھکت جنوں نے بدریت کیا ہے. اس لیے یہ مدھوبن اور کلیوگ کے انترگت سوئم کرشن چندر جو بڑے ولاسی ہیں دورھری کے روپ میں یہاں آئے اور پریم انمان میں انمان گرست ہو گئے, بعد میں بہت ہو کر ان سبھی ستاروں کا درشن کیا. نتانند پربھو آئے سروتر بھرمن گھر سے یہ ہوٹنگ نت گھر کے لیے چلے, سمست گایوں کے جھنڈ کے جھنڈ گایوں کو دیکھ کر کے ان کے بیچ میں دوڑ پڑے, کہاں کرشن کہاں کرشن, کنہیا کہاں ہیں کنہیا کہاں ہیں. ان استھانوں میں آکاشوانی ہوئی کہ بن کے کرشن اب نوتی ندیا میں اوتی ہوتی, آپ نہیں جا رہے ہوں آپ کو درشن ملے. اس پرکار سے یہاں پر سے بندے بھی شام رہنے ہیں, جبکہ کرشن چندر بلدیو جی کے ساتھ میں اور سور کے پرارتھنا سے متھرا میں آئے, متھرا میں آ کر کے کنس کا وناش کیا اور جراسندھ سے اٹھارہ آکرمن میں سترہ وارتوں پراست کر کر کے اٹھارہویں وار میں رن توڑی بن کر دوارکاپوری میں چلے گئے اور وہیں پر سمست جدوشیوں کے ساتھ میں نواس کریں. ایسے سمے میں بلدیو جی بہت دن ہو گیا کرشن اب برج میں لوٹے نہیں, تو بلدیو جی بار بار یہی کہتے ہیں ارے بھیا تم روز دن تو روتے ہو برج واسیوں کے لیے, ایسے کیول آنکھوں سے تو آنکھوں بہاتے پرنتو برج میں جانے کا نام گند نہیں لیا ہے, تم چلو گے تو چلو نہیں تو نہیں جاتا, تم انہوں نے جب کوئی نام ہی نہیں لیا جانے کا سب بدے بھی سہم آئے. یہاں آ کر کے جب کہ برج میں پرویش کیا برجواسیوں کے استھتی کو دیکھا, نند بابا آدی سمست برجواسی جنوں نے ان کو تو گلے میں لگا دیا, آنکھوں سے اسنان کرائے, برجوتیاں تیل میں بے ہوش ہو گئی, ان مدارس ہو گئی, ان کی استھتی کو دیکھ کر کے بدے جی بھی سہم پوری سانتنا واقع پھر بھی کسی پرکار برج گوپیوں کو سانتنا. تو یہاں آ کر کے ان گوپیوں کے ساتھ میں بھرمن کرتے بلدیو جی جب برج میں آئے کرشن کے گرہ میں, اس گوپیوں کے جو پریم جو تھا اتنا امڑک اس گرہ میں جتنا رنگ ہمارے پریم میں بلدیو جی بھی شام ڈوب گئے اور ڈوب کر کے کرشن بھاو میں بھر ہو کر شام پر رکھے بن گئے. اس پرکار یہ مدھوبن ہے جہاں پر کرشن لیلا کا نتیہ استھان ہے, اس استھان کو ہم پرنام کرتے ہیں, یہاں کے گرو گرن کو ہم آسن کرتے ہیں, سمست گرو ورگ ویشنو یا شرد ان استھانوں میں اپستھت کیے ہیں, انہیں کے دھارا میں ہم لوگ بھی آئے ہیں, ایسے گرو ویشنو کی آہت کی کرونا دھام کی کرپا کرونا ہو جائے. और लीलाओं की सदाई में स्फूर्ति हो। इन प्रार्थना के साथ में अपना वस्तु
जसोदा मैया ने कृष्ण को कहा, तुम तो बहुत चोर है। जसोदा मैया टोल्ड वन डे दैट यू आर वेरी ग्रेट थिंग एंड तुम चोरी करते हो। कहिए मैं क्या चोरी करता हूँ? यशोदा ने कहा, तुम घर घर में जाकर के मक्खन चोरी करता है और कहता है कि मैं नहीं चोरी करता। कृष्ण बोले, ये मैया तुम झूठ मूठ को हमको क्यों कहती है कि तुम चोर है? और कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण ने कहा, घोर भयो गौवन के पास मतलब मोही पठायो। भैया मैं नहीं माखन खाऊ। मैं माखन कब खाया? सवेरे अंधकार रहते और गायों के पीछे हमें तो मधुबन में भेज दिया, तो सवेरे तो मैंने माखन नहीं खाया। यशोदा जी हूँ, तुम माखन नहीं खाया तो किसने खाया? तुमने जरूर चुरा है मक्खन। मैं तो फिर दिन भर वही रहा गायों के पीछे पीछे। और शाम भयो, जब शाम हो गई तब क्या हुआ? तब वो सामने जब अंधकार हो गया तो मैं घर में आया, थका माका आया और आकर के सो गया। तो रात में मैं कहाँ माखन चुरा, मैं तो घर में सो गया। घर में कहाँ आया? तो इसलिए मैंने कब माखन चुराया? यशोदा ने, तूने ही मक्खन चुराया, जरूर चुराया। कन्हैया तुम बहुत निष्ठुर है। यदि मैं तुम्हारा अपना पुत्र होता शायद तब तो तुम ऐसा नहीं करती। मालूम होता है कि मैं पराये का पुत्र हूँ, इसलिए तू ऐसा हमारे प्रति तू कहती है, इल्जाम लगाती है कि जो चोर है। ये सुनते ही यशोदा जी का हृदय एकदम द्रवित हो गया, आंख में आंसू आ गए, बस अपनी छाती से लगा लिया। बोला, जे बेटा तुमने मक्खन नहीं खाया, सचमुच में तुम तो सवेरे चला गया और भला कब खाया? शाम को आया, रात तो भी तुम कब खाया? जब रोने लगी तो फिर उन्होंने कहा, तूने नहीं मक्खन खाया। इसे कृष्ण का भी सुर बदल गया। तो वो कहते हैं, मैया मैंने ही मक्खन खाया। आज यशोदा जी कहते हैं, नहीं मैंने नहीं मक्खन खाया। कृष्ण भी रोने लगे, यशोदा जी भी रोने लगी और उन्होंने गोदी में ले लिया। कहे, अब ऐसा नहीं मैं कहूंगी, तू कभी माखन चुरा करके नहीं खाएगा। ये सब लीलाएं मधुबन संबंधी है, कितनी लीलाएं भरी पड़ी है। अरे कृष्ण कुंड है, सभी लोग इसका आचमन कीजिए।
पानी पिलाते थे, अपने पानी से स्नान करते थे, पीड़ा करते थे। बोलो,
कृष्णा इसी कुंड में स्नान करते थे, गोपियों को पानी पिलाते थे और स्नान करके
सभी क्रीड़ा भी करते थे गोपियों के साथ।
रखा नहीं कर सकता है,
रस बदल गया।
जरूर सराहने अठाना रुपया जैसा हो प्रणामी देना चाहिए, दो पैसा भी हो एक पैसा भी जैसा हो।
यहाँ पर कृष्ण जी
हैं, बंदे जी असल में गोरे हैं, किंतु यहाँ पर हम देखते हैं दर्शन कर दीजिए जो इधर में चल रहा है।
प्रणामी
बलदेव प्रभु जी यहाँ पर काले हैं किंतु हैं वो गोरे। यहाँ पर जब आए गोपियों को, गोपों को, सखाओं को, गायों को बीरा में तड़पते देखा तो वो भी कृष्ण का चिंतन करने लगे, क्योंकि उस समय तो वो द्वारका में थे, इसलिए कृष्ण की चिंता करते 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 वो भी काले हो गए। अथवा कृष्ण का चिंतन करना ही ये कृष्ण प्रेम है, उस कृष्ण प्रेम को पान करके वे काले हो गए। कृष्ण का विरही ऐसा है जो ऐसा करा देता है। इसलिए बलदेव जी गोरे होने पर भी गोरे दाऊ जी, किंतु यहाँ पर काले काले दाऊ जी। हियर बलदेव इज सीन ब्लैक बट ओरिजिनली ही इज ऑफ गोल्डन कलर, बट व्हेन ही केम फ्रॉम द्वारका ही वांटेड टू क्रेस्ट कृष्ण हियर, बट कृष्ण डिड नॉट कम, ही केम हियर एंड ही सॉ दैट नंद बाबा इज वेटिंग, जसोदा मा इज वेटिंग, ऑल काउ हर्ट्स आर वेटिंग, काउज एंड कफ्स आर ऑल्सो वेटिंग, ऑल्सो वृंदावन इज होल वृंदावन इज वेटिंग, जमुना इज वेटिंग, एवरी वन ही एट वन फेल्ट सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण एंड ही बिकेम ब्लेस्ड। कृष्ण प्रेम इज सच ए थिंग, ही ऑलवेज ड्रिंक्स मधु, बट मधु इज कृष्ण प्रेम, नॉट लाइक दिस वाइन एंड अदर थिंग्स, बट वाइन ऑफ कृष्ण प्रेम ही ऑलवेज ड्रिंक्स एंड दैट इज व्हाई ही समटाइम्स बिकम्स ब्लेस्ड। वी शुड गो डाउन टू लोटस फीट ऑफ बलदेव प्रभु टू मधुवन एंड देन वी विल गो इन ए गार्डन वेर श्रील प्रभुपाद माधव महाराज हैज एस्टैब्लिश वन मठ गौड़ीय मठ इन हियर एंड वी विल गो देयर एंड दर्शन एंड आफ्टर दैट वी विल टेक सम ब्रेकफास्ट देयर। गौ प्रमाण हरि हरि बोल। यहाँ पर यहाँ उन्होंने तपस्या की, जैसे जैसे भगवान का दर्शन किया है अभी हमारे श्रीपाद है सुधर्ण प्रभु आप लोगों को
मैं यदि बोलूँ तो सब श्रोता लोग भाग जाएंगे, इसलिए मैं नहीं कहूँगा हमारी।
इसके बाद से रामचंद्र प्रभु इंग्लिश में बताएंगे, पहले सुधर्ण
आप बोल आप बोल हमारा जी मैं पर आपकी अपेक्षा कर रहे हैं, आप बोलिए जल्दी बेटा बेटा इंद्र के नाम मत करके क्या हुआ।
हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, यही है ध्रुव टीला, मधुवन के अंतर्गत ये प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर चारों ओर अभी भी झाड़ियाँ बड़ों से सुशोभित इस मधुवन को सुशोभित कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्रुव जो है श्याम मणु के नाती श्रीमद भागवत में तीनों वंश का वर्णन होता है, चंद्रवंश सूर्यवंश और सर्वप्रथम श्याम मणु का वंश। तो मनु में श्याम मनु सबसे पहले हुए हैं जो कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में सुबह के समय में मानस पुत्रों को रचने के बाद में ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि नहीं बढ़ी, तब उन्होंने प्रकृति और पुरुष के जोड़े को तैयार किया जो कि श्याम मनु और शत्रुपा। श्याम मनु के दो पुत्र हुए हैं प्रियव्रत और उद्दान पाद, और तीन कन्याएं हुई हैं आकुति प्रसूति और देवभूति। देवभूति कर्दमाय आकुति रुचय और प्रसूति दक्ष प्रजापति, अर्थात प्रसूति नाम ने कन्या को दक्ष प्रजापति को दिया, आकुति रुचि को दिया, रुचि नामक प्रजापति को दिया और कर्दम ऋषि को देवभूति को दिया। इस तरह से तीन कन्याओं का विवाह हुआ, उसमें से जो कि प्रसूति नाम ने कन्या है दक्ष प्रजापति से बहुत से पुत्र कन्याएं हुई हैं। इसी से ये वंश विस्तार हुआ, धीरे धीरे मानव समाज वर्धित हुआ है। अब उनके श्याम मनु के जो पुत्र हैं उद्दानपाद जब राजा हुए तब उनकी दो पत्नी सुरुचि और सुनीति, सुनीति से ध्रुव हुए और सुरुचि से उत्तम। एक दिन बालक ध्रुव छोटे से बालक है 5 वर्ष के उस उम्र में ही एक दिन पिताजी के गोदी में राज सिंहासन में बैठे हुए थे राजा महाराज, तो उनके गोदी में बैठने गए। इतने में उनकी दिमाग का सौतली माँ सुरुचि ने देख लिया तो कहा कि ध्रुव
तुम पिता की गोदी में, तुम्हारे पिता की गोदी में बैठ नहीं सकते। यदि तुम्हें बैठने की इच्छा है तो तुम इस शरीर को छोड़कर फिर से मेरे पेट में जन्म लो, जबकि तुम अपने पिता की गोदी में बैठ सकते हो, राजा के अधिकारी बन सकते हो। तो इस बात को कांटे की तरह एकदम हृदय में चुभी तो उस समय बड़े दुखी होकर ध्रुव वहां से चलाया, रोता रहा। इतने में उनकी माँ को दूसरों के द्वारा ये खबर पहुंच गया कि ऐसे ऐसे बालक को कटु वचन कहा। तो बालक दुखी होकर ये रो रहा था, तो इतने में मैया भी रोने लगी कि अरे दुखी माँ के दुखी संता, तो उसके लिए ऐसा ही अपदस्त हस्त ही ऐसी यदि स्थिति हो तो आगे क्या होगा। उस समय उसकी माँ रोती हुई बोली कि देखो, इस जगत में एकमात्र सहायक है भगवान श्री हरि, जो कि कमल लोचन श्रीहरि की आराधना करके तुम्हारे पूर्वजों ने इस जगत में भोग वैभव को प्राप्त किया है और पर जगत में भी सुख शांति को प्राप्त किए है। इसलिए तुम कमल लोचन हरि की आराधना करो, जो कि तुम्हें सब प्रकार से अनुग्रह करेंगे। ऐसा सुनकर ध्रुव के मन में वह निश्चय हुआ कि मैं भी कमल लोचन हरि की आराधना करूंगा। माता की बातों को सुनकर वहां से निकल पड़े कि कमल लोचन हरि कहाँ है, हरि कहाँ है। जबकि ऐसे घूमते घामते मथुरा के जमुना के किनारे गंभीर वन प्रदेश इधर में घूमते घामते आए, इतने में भगवान श्री हरि अंतर्यामी प्रभु नारद जी को भेजा कि नारद जाओ, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसको मार्गदर्शन कराओ। जब जब भगवान कृपा करते हैं, कोई भी भगवान के प्रति उन्मुख होता है और भगवान की कृपा होती है, तब गुरु अंतर्यामी रूप से सिखाए आपने, अंतर्यामी रूप से स्वयं ही प्रेरणा देते हैं। ऐसे सदगुरु को हमें प्राप्त कराते हैं। ऐसे सदगुरु का प्राप्त जैसे ध्रुव को हुआ है कि नारद जी महाराज वहाँ उपस्थित किए और आकर के उनकी परीक्षा दी, बोले कि बालक तुम यहाँ पर कैसे इस गंभीर जंगल में कहाँ घूम रहे हो, घर जाओ, यहाँ तो बाघ भल्लू शेर गद्दार है, तुम्हें खा जाएंगे, यहाँ तो नहीं रहना चाहिए, यहाँ से जल्दी भागो, अपने घर लौट जाओ। बोले कि नहीं, मैं तो घर नहीं आऊंगा, मैं तो घर छोड़ करके आया हूँ, मैं श्रीहरि की आराधना करूंगा। बोले क्यों, क्या बात है? बोले मेरी सौतेली माँ ने मुझे कटु वचन कहा है, इसलिए मैं घर नहीं लौटूंगा, मुझे राज सिंहासन में नहीं बैठाएंगे और ना ही पिता की गोदी में बैठने दिया है, इसलिए मुझे भजन करना है। बोले अरे ऐसे छोटे छोटे बातों को कभी सुनना नहीं चाहिए, ये तो भूल जाना चाहिए। तुम बालक हो, अभी बालकपन में ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के बवंडर नहीं मचाना चाहिए, तुम लौटो। तो बहुत सी परीक्षा की, फिर भी बालक नहीं लौटे। बालक ने कहा कि मैं क्षत्रिय बालक हूँ, युद्ध में तो सामने मरना जानता हूँ, कभी ठीक पेट दिखाना हमारे लिए कर्तव्य नहीं है, मैंने सीखा नहीं, इसलिए हमें तो हरि की आराधना करनी होगी। ऐसा निश्चय देखकर तो नारद जी ने कहा अच्छा यहाँ जमुना में तुम स्नान करके आओ। तो जमुना में स्नान करके आए, इतने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादश अक्षर मंत्र उनको प्रदान किया और विधि विधान से बतला दिए। बोले कि इस तरह से इस मंत्र का जप करो, एक निश्चय होकर के भजन करते करते जरूर तुम्हें प्रभु का दर्शन होगा। तब नारद जी के आदेश से बालक ध्रुव इसी स्थान पर आए, यहाँ जो ध्रुव जी और ध्रुव नारायण जी का दर्शन कर रहे हैं। तो 6 महीना तक उन्होंने तपस्या की, पहले महीना में तो कहीं कुछ भोजन कर लिया और भगवान मंत्र का जप करने लगे, दूसरे महीना में भोजन भी छोड़ दिया, तीसरे महीना में अब 15 दिन में एक बार, 7 दिन में एक बार खाने लगे, ऐसे 4वें महीना में 15 दिन में एक बार, 5वें महीना में पत्ता और खा करके और फिर ऐसे हवा पी करके ही रह गए। 6वें महीना में जा करके प्राणवायु को रोक लिए, प्राणवायु को रोकते ही सारे पृथ्वी दम दलमल होने लगी, जैसे कि नाव में हाथी चढ़ गए हो जाएगा। उस समय देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप जल्दी से दर्शन दें। तब भगवान श्रीहरि उनके हृदय में प्रकट हुए और हृदय से हृदय में दर्शन देते हुए जब बाहर आ गए, प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिया, तो ध्रुव ने देखा कि अरे प्रभु का तो अब दर्शन नहीं हो रहा है। तो वहां से खोल देखा कि सामने प्रभु विराजमान है। उस समय उनकी सौस्तुति प्रार्थना की तो भगवान बोले कि ध्रुव तुम वर मांगो। ध्रुव ने कहा प्रभु आप तो जानते हैं, बोले कि अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर कुछ कामना वासना रही है, राज्य प्राप्ति की लालसा छह है, आज से तुम्हें 36,000 वर्ष का निष्कट राज्य प्राप्त होगा और मेरे लोग तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा, तुम मेरे अच्छे लोग को प्राप्त करोगे। राजा के कर्तव्य अंतिम समय में मेरे चरणों में भक्ति लाभ करके समस्त सब को छोड़कर मुझको एकांत रूप से प्राप्त करोगे। इसलिए ध्रुव ऐसे वरदान पा करके प्रभु के सौस्तुति प्रार्थना की, प्रभु भी अंतरित हो गए। जब लौटने लगे इतने में बालक के मन में आया, अरे ये मैंने क्या किया कि प्रभु से मैंने संसार की वस्तुओं को मांगा, स्थानाधिलासी स्थित वयम त्वम प्राप्त देव मुनिंद्रम काचम विचिन्न रत्नम स्वामेन कृतार्थोऽस्मि परम न जाति। हे प्रभु हम आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए हैं, हमें कोई वर की अभिलाषा नहीं, हम तो थक गए हैं कि कांच खुलते खुलते और कांचन मिल गया और कांचन को पा करके उसे फेंक दिया और फिर कांच के टुकड़े में हम रम गए, इस संसारिक वस्तुओं में हम थक गए। हाय हाय मेरे अंदर ऐसी कामना क्यों आई। तो पश्चाताप करते लिए ध्रुव महाराज ऐसे भगवान के चरणों में भक्ति लाभ के श्रीमद् भागवत में चतुर्थ स्कंद में इस ध्रुव प्रसंग में कहा है कि भगवान के चरणों में ध्वज वज्र अंकुश आदि चिन्ह समुदाय हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने लीलाएं की हैं उनके चरण चिन्ह विराजमान हैं। तो अंकुश आदि इसका क्या